परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बाइबल की मार्गदर्शक रूपरेखा देखेंगे। पवित्र शास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है और इसे एक अनोखी पुस्तक क्यों कहा गया है और इसे परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन क्यों कहा जाता है, इन बातों पर विचार करेंगे। साथ ही हम देखेंगे प्रकाशन, प्रेरणा, स्पष्टीकरण एवं व्याख्या का क्या अर्थ है तथा बाइबल और उसके प्रत्येक अध्याय का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो, प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो। मैं जीऊंगा तेरे लिए, जान भी दूंगा तेरे लिए, प्रभु तेरा प्यार से बदल ही गया जीवन, कांटों से भरी राहें थी मेरी, तेरे शरण में हुआ मैं पावन। तेरे आने से तुझे पाने से बदल ही गया जीवन, कांटों से भरी राहें थी मेरी, तेरे शरण में हुआ मैं पावन। जीऊंगा तेरे लिए, जान भी दूंगा तेरे लिए,
प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो। भटकों को तेरी राह दिखलाऊं, अपनों के लिए तूने क्या सहा करूं मैं ये समझाऊं। वादा ये रहा भूले भटकों को तेरी राह दिखलाऊं, अपनों के लिए तूने क्या सहा करूं मैं ये समझाऊं। प्यार सारे जहां में हो, प्रभु प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो, प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो, मैं जीऊंगा तेरे लिए, जान भी दूंगा तेरे लिए।
प्रिय श्रोता, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। आज के इस पवित्र बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं तो हम आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को निरंतर सुने और अपने मित्रों को भी इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, ताकि वे भी इस कार्यक्रम को सुनकर आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए हम आज के इस बाइबल अध्ययन को आरंभ करें, लेकिन आरंभ करने से पहले हम परमेश्वर से इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। जब हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं और उसमें से सीखना चाहते हैं, तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि प्रत्येक श्रोता भाई बहन की आप सहायता करें। यदि कोई अपने जीवन से दुखी व निराश है, तो हो सकता है अपनी बीमारी को लेकर या नौकरी को लेकर चिंतित है या अन्य समस्याओं को लेकर परेशान है, तो आप उन सबों की सहायता करें। आप उनकी समस्याओं से उन्हें छुटकारा दें, ताकि वे सब आपको धन्य कहने पाएं। इस समय आप हम सब के साथ होइए और हमारे अध्ययन में हमारी सहायता प्रदान कीजिए। इस प्रार्थना को हम आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए हम आज के इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। परंतु इससे पहले मैं उन श्रोताओं को बताना चाहता हूँ जो इस कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं। हम इस कार्यक्रम में बाइबल अध्ययन की रूपरेखा को देख रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि वचन का प्रकाश या स्पष्टीकरण का होना कितना अनिवार्य है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें वचन का प्रकाश देता है, जिससे हम पवित्र वचन को समझ पाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे मन और हृदय के विचारों को खोलता है, ताकि हम पवित्र वचन को पवित्र आत्मा की प्रकाश के द्वारा पढ़कर समझ सकें। इसलिए हमने देखा कि पवित्र वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा का प्रकाश या स्पष्टीकरण का होना आवश्यक है। अब इसी से संबंधित एक नए विषय पर हम अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं और आज के अध्ययन का विषय है व्याख्या अर्थात इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर व्याख्या से हमारा तात्पर्य उस व्याख्या से है जिसे आप और मैं परमेश्वर के वचन की दिया करते हैं, और इसी कारण से मसीहत में कई समुदाय देखने को मिलते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। और जहाँ कहीं भी व्याख्या के प्रति असहमति है, तो निश्चय ही कोई न कोई व्यक्ति उसमें गलत है। इसलिए जब हम पवित्र बाइबल की व्याख्या करते हैं, तो उनके अनेक महत्वपूर्ण नियमों का पालन व्याख्या के समय करना जरूरी है। तो आइए हम पहले नियम को आरंभ करते हैं। द ओवरऑल पर्पस ऑफ द बाइबल शुड बी कंसिडर्ड। पवित्र बाइबल का पूर्ण रूप से जो उद्देश्य है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और यही कारण है कि मैं पवित्र शास्त्र की सब बातों की शिक्षा देता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि आपको पवित्र शास्त्र के उन विशेष पदों को जानना चाहिए इससे पहले कि आप किसी सिद्धांतिक निर्णय पर पहुंचे। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि संपूर्ण बाइबल के पदों पर विशेष ध्यान दिया जाए जो अपने विषय से संबंधित है, अर्थात उन सब पदों को देखा जाए। और अब हम दूसरा नियम देखते हैं, पवित्र शास्त्र किसके लिए संबोधित किया गया है, इसे भी ध्यान में रखना अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं यहोशू एक अध्याय और उसके दूसरे पद में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, उठ इस यरदन नदी को पार कर। अब हमें यह ध्यान देना है कि आज्ञा किसे दी गई है। यदि एक व्यक्ति यरदन नदी पार करके कहता है, आखिर मैंने नदी पार कर ही लिया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी किया है, तो यह गलत व्याख्या है, क्योंकि जब वह व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा था तो ध्यान देना चाहिए था कि यह आज्ञा उसे नहीं परंतु यहोशू को दी गई थी, क्योंकि परमेश्वर यहोशू से बातें कर रहा था। परंतु मैं विश्वास करता हूं कि यहां पर हमारे लिए भी एक महान संदेश है। जी हाँ, यह सच है कि समस्त पवित्र शास्त्र मुझको नहीं लिखा गया है, किंतु समस्त पवित्र शास्त्र मेरे लिए लिखा गया है। यह सबसे अच्छा नियम है जिसे हमेशा मस्तिष्क में रखा जाना चाहिए, ताकि हम उस बात को जान लें कि कौन सा वचन कब और किसके लिए कहा व लिखा गया है। इसलिए संबोधन को ध्यान देना आवश्यक है, जैसे यहोशू के लिए दिया गया। प्रिय मित्र, साहित्यिक व्याख्या करने के लिए कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है, और उसमें सबसे पहला है तत्काल संदर्भ। पवित्र शास्त्र के किसी भी पदस्थल को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए जो तत्काल संदर्भ में है। इतना ही नहीं, इस पदस्थल के पहले और बाद के निकटतम संदर्भ को भी अच्छी तरह बार बार अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कि वह पदस्थल क्या कह रही है और उस पदस्थल के बारे में पवित्र शास्त्र के दूसरे पद क्या कह रहे हैं। इसके बाद हमें ध्यान देना है दूरस्थ संदर्भ। इसमें हमें यह देखना है कि पवित्र शास्त्र के किस भाग में वह मुख्य पदस्थल है और उसे अच्छी तरह व्याख्या या समझने के लिए एक या दो अध्याय को अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए जिसमें उस पद के बारे में लिखा गया है, और उस पद का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि आपको पुस्तक के उस अध्याय को पूरा पढ़ना है जहाँ जहाँ वह पद पाया जाता है और उसका अध्ययन भी करना है। और तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है वह यह है कि संपूर्ण पुस्तक के संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए। पुस्तक की उन सभी विशेषताओं का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है जो इस संपूर्ण पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं, ताकि उस वचन की सही व्याख्या दी जा सके। पवित्र शास्त्र में कुछ वचनों को जोर देकर कहा गया है और वैसे वचनों का अध्ययन करना आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाकी वचनों का अध्ययन नहीं करेंगे। ध्यान दें कि पवित्र शास्त्र का सब वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी को कम या ज्यादा नहीं आंका जा सकता है। हाँ, कहीं कहीं कुछ वचनों पर जोर दिया गया है क्योंकि वहां पर उसकी विशेषता है। इसी प्रकार अलग अलग जगह पर कई पदों पर जोर दिया गया है। प्रिय मित्र, आइए हम पवित्र शास्त्र की व्याख्या करने के लिए चौथी बात पर ध्यान दें, मूल वचन क्या कहता है उसे खोजें। बाइबल अध्ययन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो बात मूलभूत रूप से कही गई है और उसे ढूंढने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अच्छे और सफल बाइबल अध्ययन के लिए आपको इब्रानी और यूनानी भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि पवित्र शास्त्र की यही मूल भाषाएं हैं जिसमें बाइबल लिखी गई है। यदि आप इब्रानी और यूनानी नहीं पढ़ते हैं और जब आप किसी अनुवाद की हुई पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो आप प्रभु यीशु के कहे वचन के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उन पवित्र बाइबल के आधुनिक अनुवादों को पढ़ने की सलाह नहीं देता, यद्यपि उसमें भी कई अच्छी बातें पाई जाती हैं। इसका कारण यह है कि उस अनुवाद में अपने विचार भी जोड़ दिए जाते हैं जो उचित नहीं है। मैं यहाँ पर किसी अनुवाद का खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि कई अनुवादों में विचारों का मिश्रण भी किया जाता है। मैंने ऐसा पाया है क्योंकि हम मसीही सिद्धांतिक तौर से कई अलग अलग विचार रखते हैं, इसलिए जब भी एक समूह पवित्र बाइबल के अनुवाद के कार्य को अपने ऊपर लेता है तो अनुवाद के साथ साथ अपनी सिद्धांतिक विचारों को भी उसमें जोड़ देता है और हमें मूल शिक्षा से दूर कर देता है। और अनेक बाइबल अनुवाद को पढ़कर परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जीना आरंभ कर देते हैं और इस प्रकार से उनके लिए परमेश्वर का वचन ठोकर का कारण बन जाता है। इसलिए यदि एक उदारवादी विचारधारा का व्यक्ति बाइबल का अनुवाद करता है तो आपको उसके अनुवाद में उदारवाद का स्वाद मिलेगा, इसी प्रकार से यदि कोई मूल सिद्धांतवादी विचार का व्यक्ति पवित्र बाइबल का अनुवाद करता है तो आप कई स्थानों में एक तरफा अनुवाद पाएंगे या आपको पवित्र बाइबल के प्रति अनुवाद में एक विशेष पक्षपात की झलक नजर आएगी। परंतु जिन्होंने मूल भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये वे लोग थे जिन्होंने यह विश्वास किया कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और उसके साथ उसी के अनुसार व्यवहार किया। जब उन्हें कुछ शब्द मिले जिन्हें वे अनुवाद नहीं कर सकते थे तो उन्होंने उसे मूल भाषा में ही लिख दिया। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं अब्बा और बैप्टिजो। यहाँ पर सिर्फ लिपि में बदलाव आया है, अन्यथा अर्थ और बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा उसके मूल लिपि में है। हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है कि आधुनिक अनुवाद में एक खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि अनुवाद सिद्धांतमक ढंग से किया जाता है, जबकि एक अनुवादक को चाहिए कि वह एक भाषा का सही शब्द निकालकर दूसरे भाषा के शब्द में रखे ताकि दोनों में तालमेल हो सके, और यदि संभव है तो सरल और पहचान वाले शब्दों का प्रयोग करें। हमारे अधिकांश आधुनिक अनुवादक इसे आधुनिक बोलचाल की भाषा में अनुवाद करने का प्रयत्न करते हैं, और ऐसा करने के द्वारा वे वास्तव में मूल संदेश का अनुवाद करना भूल जाते हैं कि मूल संदेश क्या कह रहा है। मैं व्यक्तिगत रीति से उन बाइबलों का चुनाव करता हूं जो मूल भाषा के करीब हो और सही अनुवाद किया गया हो। इसलिए जब भी आप बाइबल का चयन करते हैं तो सही अनुवाद वाली बाइबल का चयन करें जिससे आपको मूल संदेश प्राप्त होंगे। मैं समझता हूं कि कुछ बाइबल हैं जो सही अनुवाद करने के द्वारा लोगों के दिल में अपना जगह बना रही है, जिसमें बहुत से सुधार किए गए हैं। यद्यपि हिंदी बाइबल में भी हमें उन बाइबलों का चुनाव करना चाहिए जो सही अनुवाद किए गए हों। मैं यह नहीं कहता कि बाइबल अनुवाद गलत है, लेकिन मैं यह बता रहा हूं कि कुछ बाइबल मूल भाषा के मूल संदेश को हमें पहुंचाते हैं। यदि मैं आपको किसी बाइबल की सलाह दूं तो आप इंग्लिश बाइबल में से द न्यू स्कोफील्ड रेफरेंस बाइबल लें, क्योंकि मैं जानता हूं कि पुराना अनुवाद और नए अनुवाद में क्या फर्क है। चाहे कुछ भी हो, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मूल भाषा के शब्दों के समान अनुवाद करने वाले पुस्तक को चुनने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि आपको सही संदेश मिल सके, और यह निर्णय आपको ही लेना है। प्रिय मित्र, पवित्र वचन की व्याख्या हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से दूसरों तक पहुंचाते हैं। यदि हमने पवित्र वचन का सही व्याख्या नहीं दिया और अपने विचारों को भी उसमें सम्मिलित किया है तो निश्चय ही परमेश्वर का मूल वचन लोगों तक नहीं पहुंचेगा, और ऐसी स्थिति में चाहे आप हों या मैं, गलत शिक्षा की वजह से हम भटक सकते हैं, क्योंकि यदि हमें मूल वचन ही नहीं मिलेगा तो निश्चय ही हम गलत शिक्षा का अनुसरण करेंगे और उसी की तरह अपने जीवन को चलाएंगे। इसलिए अनुवादक को चाहिए कि वह व्याख्या करने के उन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनुवाद के समय अवश्य करे। और अभी हमने व्याख्या करने के कुछ नियमों को देखा है, परंतु मैं आपको संक्षिप्त में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं ताकि जब आप भी पवित्र वचन की व्याख्या कलीसिया में या प्रार्थना सभा में करें तो इन बातों का ख्याल रख सकें। पवित्र बाइबल की व्याख्या शाब्दिक की जाए, अर्थात यथा शब्द की जाए। शाब्दिक व्याख्या का मतलब है पवित्र वचन के शब्द और वाक्य को उसके साधारण अर्थ में समझा जाए ताकि वे शब्द इसी रीति से समझे जाएं जो साधारण बोलचाल में उपयोग होते हैं। यह एक शाब्दिक या शब्दों का अर्थ है जो बातचीत या संवाद का आधार है। बाइबल के आधार पर बात करें तो नया नियम की अक्षरशः व्याख्या के लिए पहले से ही बता दिया गया था। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं पुराने नियम की भविष्यवाणियां, जैसे भजन संहिता 22, यशाया 7:14, यशाया 53:1-2 और मीका 5:2। ये सब भविष्यवाणियां जो पुराने नियम में कही गई थी अक्षरशः नए नियम में पूर्ण हो चुकी हैं। स्वर्गीय डॉक्टर डेविड कूपर ने इस विषय में ठीक ही कहा है, जब पवित्र शास्त्र का सरल वचन सामान्य अर्थ देता है तो कोई दूसरा अर्थ ना खोजें। इसलिए इसके प्रत्येक शब्द को उसकी प्राथमिक, साधारण और रिवाजी तौर पर ही लें। शाब्दिक अर्थ तभी लें जब वर्तमान संदर्भ में कोई घटना हो और उसी संदर्भ में होकर उस पूरे हिस्से का अध्ययन किया जाए जो उससे संबंधित है, और ये पढ़े गए हिस्से या भाग स्वतः सिद्ध और मूलभूत सत्य स्पष्ट रूप से भिन्नता का संकेत देते हैं। वास्तव में यह कथन सही है, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ तो मित्रों, अब हम और आगे बढ़ते हैं और व्याख्या करने के और एक मुख्य बात पर विचार करते हैं, व्याकरणात्मक संबंध। क्योंकि हम पवित्र शास्त्र को मौखिक और पूर्ण प्रेरणा द्वारा लिखा हुआ स्वीकार करते हैं, इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करें। पवित्र शास्त्र के अध्ययन के लिए व्याकरणात्मक संबंध का होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द ही है जो एक दूसरे से संबंध को जोड़ते हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम व्याकरण में क्रिया, काल, सर्वनाम, पूर्वसर्ग, संयोजन शब्द और नियम की संरचना का अध्ययन अवश्य करें, ताकि हम पवित्र वचन का सही व्याख्या दे सकें। अब व्याकरण के बाद आता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ऐतिहासिक संदर्भ। ऐतिहासिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ढांचे के समान है जिसमें से पवित्र वचन की व्याख्या की जाती है। प्रत्येक पवित्र शास्त्र की पुस्तक ऐतिहासिक संदर्भ में लिखे गए हैं और हमें इसे समझना चाहिए, ताकि यह पवित्र वचन की व्याख्या करने में सहायक सिद्ध हो सके या सहायता प्रदान कर सके। इसके अलावा यह सही व्याख्या करने में भी मदद करती है, ताकि लोगों तक परमेश्वर का वचन सही रूप में पहुंचे और लोग इस वचन को पढ़कर या सुनकर परमेश्वर की महान आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रिय मित्र, हम इस अध्ययन में परमेश्वर के पवित्र वचन की व्याख्या के बारे में देख रहे हैं कि हमें परमेश्वर के वचन की व्याख्या किस तरीके से करना चाहिए, ताकि इसमें किसी प्रकार की मिलावट व गलत शिक्षा लोगों को न पहुंचे। और इसके लिए अब तक हमने कुछ महत्वपूर्ण नियमों को देखा है जो हमें परमेश्वर के वचन की व्याख्या करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन नियमों का अवश्य ही पालन करें। आपके लिए मैं फिर से उन मुख्य नियमों को दोहरा देता हूं, ताकि आप इसे सरलता से याद रख सकें कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप बाइबल के पूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखें कि बाइबल के सभी पद महत्वपूर्ण हैं और सबको एक ही दृष्टि से देखना है। और दूसरी बात यह देखना है और ध्यान देना है कि पवित्र वचन किसे संबोधित कर रहा है, कब, कहां और कैसे संबोधित कर रहा है, क्योंकि संबोधन भी महत्वपूर्ण है, ताकि उसकी व्याख्या उसी रूप में की जा सके। और तीसरी बात जो ध्यान देने वाली है, तत्काल संदर्भ। पवित्र वचन में आपको ध्यान देना है कि वचन का तत्काल संदर्भ क्या है, और इसे समझने के लिए आपको पवित्र शास्त्र के आगे और पीछे के उन हिस्सों को पढ़ना होगा, ताकि आप तत्काल वचन के संदर्भ को समझ सकें। और चौथी मुख्य बात जो ध्यान देने योग्य है, वह है कि मूल वचन क्या कहता है, उसे खोज निकालें। इस विषय में हमने कुछ उदाहरणों को भी देखा था कि यदि हम मूल भाषा इब्रानी और यूनानी जिसमें बाइबल लिखी गई है नहीं जानते हैं, तो कई बार व्याख्या करते समय या अनुवाद करते समय अनुवादकों के द्वारा गलती हो जाती है। इसलिए यह कोशिश करना चाहिए कि आप उन लोगों से अवश्य सलाह ले लें जो इन भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, ताकि आप सही अनुवाद और सही व्याख्या लोगों तक पहुंचा सकें। और आपकी कोशिश यह हो कि आप सही अनुवाद वाले बाइबल का उपयोग करें। इससे आपको सही वचन और सही शिक्षा प्राप्त होगी। और अब अंतिम बात जो ध्यान देने योग्य और महत्वपूर्ण है, बाइबल की व्याख्या यथाशब्द या अक्षरशा होनी चाहिए। प्रिय मित्र, यहाँ पर वास्तव में ध्यान देने की बात है कि आप परमेश्वर के वचन की व्याख्या किस रीति से करते हैं, क्योंकि कई बार वचन बहुत सीधा और सरल होता है, परंतु हम लोग उसे जोड़ तोड़ कर व्याख्या देते हैं, जिससे उस वचन का अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए मुझे और आपको अलग से वचन में खोजने की जरूरत नहीं है, परंतु जो लिखा है उसी को सरलता से लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे एक साधारण व्यक्ति भी समझ जाए कि परमेश्वर का वचन उसे क्या कहता है। प्रिय मित्र, हमने आज के इस अध्ययन में एक विशेष विषय को देखा है, व्याख्या, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब इस विषय से अवश्य ही परिचित हो गए हैं और लाभ भी प्राप्त किए हैं। फिर भी आप स्वयं इस विषय पर अध्ययन जारी रखें ताकि आप इसके बारे में और अधिक आशीषों को प्राप्त कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के अध्ययन में हम सबकी सहायता और मदद की है। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो बीमार, दुखी और निराश में हैं, प्रभु जी आप उन्हें छुए और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें ताकि वे स्वस्थ और भले चंगे होकर आपके नाम की महिमा कर सकें। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपने जीवन से निराश होकर अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, प्रभु आप उनसे बातचीत करें ताकि वे इस बात को जान सकें कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और आपने उन्हें जीवन दिया है। हाँ प्रभु, हमारी प्रार्थना है आप उन्हें शांति प्रदान करें ताकि वे आपके नाम की महिमा दे सकें, और जितने भी लोगों ने आज आपके वचन को सुना है प्रत्येक के जीवन से आप बातचीत करें ताकि हम हरेक अपने आत्मिक जीवन में आपकी निकटता में आ सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हम सब की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। बाकी के समय भी आप हमारे साथ हो, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।